मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के अपने इस डेली ऑडियो लेक्चर की शुरुआत मैं करने जा रहा हूं देशद्रोह पर कुछ बातें करने से, और इसके बाद जो दूसरी छोटी छोटी घटनाएं हुई हैं उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो आज सीधे आते हैं देशद्रोह, और इसी को राजद्रोह भी कहा जाता है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? अखबारों में आप पढ़ रहे हैं कि इसी आरोप से फिलहाल दिशा रवि, जो बेसिकली एक्टिविस्ट हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, और उनके दो जो साथी हैं शांतनु और जेकब, उनकी तलाश की जा रही है। उनकी तलाश क्यों की जा रही है? क्योंकि उन पर देशद्रोह का आरोप है, राइट? देशद्रोह का आरोप क्यों है? मेरी बात आप ध्यान से सुने, मैं क्रमशः अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको यह भी पता लग सके कि किसी भी टॉपिक को सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से किस तरीके से तैयार करना चाहिए और किस सीमा तक तैयार करना चाहिए। ठीक है, दिशा रवि को गिरफ्तार किया जा चुका है, दो दोस्तों के उनकी तलाश हो रही है, तो ठीक है, हो सकता है वो गिरफ्तार होना हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आरोप यह है कि इन्होंने एक टूल किट बनाई थी। तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि भाई ये जो टूल किट की बात कही जा रही है तो ये क्या है, अदरवाइज फिर आप कुछ ना कुछ मिस कर देंगे। आप याद कर लेंगे कि एक टूल किट बनाई थी तो फिर बात बनेगी नहीं, हालांकि आप अनुमान लगा सकते हैं। तो देखिए, टूल किट क्या है? यदि आप अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे तो टूल का मतलब है उपकरण, छोटे छोटे जो आप जैसे रिंच प्लास और ये सब रखते हैं, और किट का मतलब है कि जिसमें रखते हैं। आप अगर मेडिकल लैंग्वेज में कहें तो आप कह सकते हैं फर्स्ट एड बॉक्स, प्राथमिक उपचार बक्सा, है ना। आप एक बक्से में इस तरह की दवाइयां रख लेते हैं कि अगर कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया, जरूरत पड़ गई तो इन इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो बक्सा खोलते हैं, उसमें से अलग अलग दवाइयां निकाल करके दे देते हैं। पुराने जमाने की फिल्में देखिए, जब डॉक्टर्स आते थे, जब आप घर पर बुलाते थे तो बकायदे उनका एक बैग सा होता था या एक ब्रीफ केस जैसी होती थी, और वो आता था और उसमें से फिर अपनी चीजें निकाल निकाल करके वो इलाज करता था, देखता था कि एक बार तो देख लें। आप अपने घर में मैकेनिक को बुला लीजिए कि भैया मेरा फोर व्हीलर खराब हो गया है, तो मैकेनिक एक बक्सा लेकर के आएगा जिसमें रिंच प्लास और जो जो चीजें वो सोचता है कि शायद जरूरत पड़ जाएगी, पेचकश वगैरह उसमें डाले रहता है, तो उसे कहते हैं टूल किट्स, जिसमें आप सामान रखते हैं। लेकिन यहां जिस हम टूल किट की बात कर रहे हैं और जिस संदर्भ में टूल किट की बात हो रही है, देखिए सोशल मीडिया से संबंधित है। तो टूल किट को आप डिफाइन कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं है, आप कह लीजिए कि ये सेट ऑफ गाइडलाइंस है या सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी कि यहां जो उपकरण है उस उपकरण के रूप में इंफॉर्मेशन है, गाइडलाइंस है, निर्देश है, और इस बारे में निर्देश है कि जैसे आप कोई भी हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य को कैसे पाया जा सकता है, बस कि ये हमारा पर्टिकुलर एम है, ऑब्जेक्टिव है, और इस ऑब्जेक्टिव को हम ऐसे 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 प्राप्त कर सकते हैं, तो कैसे 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 प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में जो निर्देश दिए गए हैं, जो इंफॉर्मेशन दी गई है, बस वही टूल किट्स है, और इसका इस्तेमाल जो किया जाता है सीधी सी बात है कि सोशल मीडिया की वेबसाइट पर किया जाता है। अभी इन पर जो आरोप लगाए शायद इससे और क्लियर हो जाए। आप देख रहे हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन को लेकर के विदेश के भी ग्रेटा थनबर्ग और एक दो लोगों ने और आपके इसका समर्थन कर दिया है अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। तो टूल किट के अंतर्गत जैसे मान लीजिए कि एक आंदोलन करना है तो ठीक है, इतने बजे आंदोलन होगा, आंदोलन का स्वरूप ऐसे होगा, ये लोग उसमें जाएंगे, तो इस तरह की जब आप इंफॉर्मेशन दे देंगे तो वो टूल किट बन जाएगा। तो इन पर आरोप ये लगाया गया है कि देशद्रोह के लिए इन्होंने टूल किट का इस्तेमाल किया, राइट? ये पृष्ठभूमि आपको क्लियर हो गई होगी। दोस्तों ये जो देशद्रोह का जो नियम है, जो कानून है, अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, हमारे यहाँ ये कानून है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन जब आपने फ्रीडम मूवमेंट के बारे में पढ़ा होगा तो आपको मालूम है कि ब्रिटिश सरकार ने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए इससे संबंधित पता नहीं कितने कानून बनाए थे, अलग अलग कानून बनाए थे। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि प्रेस एक्ट लेकर के आई कि आप अखबारों में ये चीजें नहीं छाप सकते, रॉलेक्ट एक्ट लेकर के आई, आप हथियार नहीं रख सकते, हथियार लेकर के जगह एक किसी पर्टिकुलर टाइम पे जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते, और भी बहुत सारे आप बैठक नहीं कर सकते, आप आंदोलन नहीं कर सकते, इस तरह के बकायदे ब्रिटिश सरकार रूल्स लेकर के आती थी, कानून लेकर के आती थी, रूल्स नहीं कहना चाहिए, कानून लेकर के आती थी। देखिए उस समय स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट थी, क्योंकि हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन था तो वहां जो स्थापित सत्ता थी ब्रिटिश की सत्ता थी, हम साफ कहते थे कि भैया हमारा देश हमें वापस करो, आप वापस जाओ, हम उसके खिलाफ ही संघर्ष कर रहे थे। तो वहां तो बहुत स्पष्ट रूप से था कि जो भी आंदोलन होते थे, जो भी संघर्ष होते थे, खासकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, उनका अंतिम लक्ष्य तो वही होता था, ठीक है धीरे 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 हम भारत छोड़ो तक पहुंचे कि भारत छोड़ो और जाओ, लेकिन सामान्यतः यही था कि भैया हमारा देश है, हमें शासन सौंप दो। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में भी आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि उनके हाथों में अगर शासन आ गया है तो देशद्रोह के एक्ट को समाप्त कर दिया गया हो, क्योंकि ठीक है अब ब्रिटिश सरकार की सत्ता देश में नहीं है, देश पर नहीं है, लेकिन दूसरे तरीके के देशद्रोह की आशंकाएं बनी रहती हैं। तो अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके दिमाग में रहना चाहिए वह है कि जो हमारी भारतीय दंड संहिता है, इंडियन पेनल कोड, उसकी जो धारा है 124A, ये आपको रट जाना चाहिए। देखिए कुछ बातें जब आप बहुत ही तार्किक रूप से और तथ्यात्मक रूप में कहते हैं तो उसका बहुत जबरदस्त असर होता है। मैं सभी धाराएं रटने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन चूंकि अभी जो राजद्रोह देशद्रोह का जो विषय है वो बहुत ही बर्निंग विषय है तो आपको मालूम होना चाहिए, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। तो इंडियन पेनल कोड की धारा 124 का जो ए है उसमें जो प्रोविजन किया गया है वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति लिखकर, बोलकर या किसी भी प्रकार से भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ, देखिए यहां आपको ध्यान देना होगा, विधि द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ मतलब वो ऐसी सरकार है जो कानूनी सरकार या संवैधानिक रूप से सरकार बनी हुई है। इस यहां मैं थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए कहूं, जैसे कि जो नक्सलाइट एरिया, जैसे आप देखिए कि छत्तीसगढ़ का एक जो हिस्सा है वो नक्सलाइट से काफी प्रभावित है, मान लीजिए कि वहां नक्सलाइट का समूह है, वो घोषित कर दे कि हम यहां के सरकार हैं, तो वो विधि द्वारा स्थापित सरकार नहीं है, तो उसके खिलाफ अगर कोई संघर्ष कर रहा है, उन्हें हटाने की कोशिश कर रहा है, तो वो सही है, गलत नहीं है, वो राजद्रोह नहीं है, देशद्रोह नहीं है। देशद्रोह तब होगा जब विधि द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ घृणा फैलाने की कोशिश हो रही है, अवमानना पैदा करने की कोशिश हो रही है, या उसके साथ सीधे सीधे शत्रुता का भाव रख करके काम किया जा रहा है, तो वो राजद्रोह होगा। और ये तरह का संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध का मतलब है कि इसके लिए जब आप गिरफ्तारी करते हैं, किसी को गिरफ्तार करते हैं, तो उसके लिए वारंट की जरूरत नहीं होती, नहीं तो अदरवाइज आप जानते हैं कि आप किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए आपको वारंट की जरूरत होती है, न्यायालय से आदेश लेकर के आना पड़ता है। और अगर किसी पर यह अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसे 3 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। दोस्तों ये राजद्रोह के मामले में थोड़ी सी जानकारी मैंने दी है। इसके बारे में हमारे यहां बकायदे सुप्रीम कोर्ट के 2 सबसे महत्वपूर्ण फैसले हैं, इन्हें आप देख लीजिए। 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस का नाम मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट इससे उलझ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी परिस्थिति में सरकार की आलोचना करना राजद्रोह के तहत नहीं गिना जाएगा। अगर आप सरकार की आलोचना कर रहे हैं, कठोर शब्दों में ही आलोचना कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह देशद्रोह है या राजद्रोह है, ठीक है। दूसरा जो मामला था 1995 का था, उसके अंतर्गत खासकर खालिस्तान जिंदाबाद और इस तरह के नारे लग रहे थे, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि खालिस्तानी समर्थक नारेबाजी राजद्रोह के दायरे में इसलिए नहीं आती क्योंकि समुदाय के अन्य सदस्यों ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, सिर्फ नारेबाजी करने से राजद्रोह नहीं हो सकता। कैजुअल तरीके से यदि कोई नारेबाजी करता है तो वह राजद्रोह नहीं माना जाएगा। तो ऐसे ही किसी ने नारेबाजी कर दी तो ये नहीं माना जाएगा कि ये राजद्रोह था। अब देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में काफी कुछ राजद्रोह के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। कुछ ही समय पहले शशि थरूर जी और खासकर जो 6 पत्रकार और भी जो थे उनके खिलाफ, राजदीप सरदेसाई थे, जफर आगा थे, अनंतनाथ मृणाल पांडे, इनके खिलाफ राजद्रोह का केस दायर किया गया, संजय सिंह के खिलाफ किया गया, तो इस तरह के कुछ मामले आप लोग जानते हैं कि जो जेएनयू के कन्हैया थे 2016 में, उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दायर किया गया था। तो अब ये विषय मुझे लगता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफी बर्निंग सब्जेक्ट होता जा रहा है और इस पर आपको अपनी राय कायम करनी चाहिए। इसे आप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मान लें और इसके संबंध में जो भी आपको अच्छे तथ्य जानने को मिलते हैं, मेरा सजेशन है कि प्लीज आप उन्हें नोट करते जाएं। अखबारों में छपा है फ्रेंड्स की, और ये रेडियो न्यूज में भी था कि जो हमारा प्रवर्तन निदेशालय है, जो ईडी है, उसने एमनेस्टी, एक ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ है, इंटरनेशनल एनजीओ है, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया लिमिटेड, इसकी 17 करोड़ की जो चल संपत्ति थी उस पर अभी स्थायी तौर पर रोक लगा दी है, या यूं कह लीजिए कि उसे जब्त कर लिया है। और ये कदम उठाया गया धन शोधन के मामले में। देखिए, धन शोधन के मामले में मत कहने का अर्थ है कि जो हमारे एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इन्हें विदेशों से भी धन मिलता है। उसकी अपनी एक प्रक्रिया है, नियम है कि उन्हें कैसे धन मिलेगा। तो उस विदेशों से जो धन मिलता है, डेफिनेटली उसके बहुत से रिपरकशन होते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए बकायदे हमारे यहाँ कानून बनाया गया है, एक फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन ब्रैकेट है रेगुलेशन एक्ट 2010। उससे काफी कुछ धन में ट्रांसपेरेंसी रही और बाद में फिर इसमें अमेंडमेंट किया गया पिछले साल 2020 में, और इसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से बातें की थी। तो जब आप विदेशों से धन लेते हैं तो उसकी अपनी एक प्रक्रिया है, उसके उपयोग किए जाने पर भी एक प्रक्रिया है, और अगर सरकार को लगता है कि उस प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है तो स्वाभाविक तौर पर है कि सरकार कदम उठा सकती है। इस बकायदे एक्ट के तहत ये प्रावधान है, तो उन्हीं प्रावधानों के तहत फिलहाल एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया लिमिटेड के 17 करोड़ की जो चल संपत्ति थी उसे अस्थायी तौर पर जब्त कर लिया गया है। एक फैक्ट है, चूंकि एनजीओ पर क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना रहती है और प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी यह इंपॉर्टेंट हो सकता है। न्यूज में दोस्तों आपने COP26 के बारे में सुना होगा और टीवी न्यूज पर काफी विस्तार से आया था। बेसिकली ये जो हमारा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, उससे संबंधित है। 26 का मतलब है कि इसका 26वां सम्मेलन होने जा रहा है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन है सामान्य तौर पर समझ लीजिए। ये जो सम्मेलन है ये नवंबर में ब्रिटेन में होगा, ब्रिटेन के ग्लासगो में होगा। अभी बस आप इतनी ही जानकारी रखिए, जब सम्मेलन होगा तब देखा जाएगा, उस पर हम लोग और बात करेंगे। लेकिन जो COP है इसके बारे में आपको अलग से थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज यानी कि पर्यावरण से संबंधित टर्मिनोलॉजी है और इसकी जानकारी आपके पास अच्छी खासी होनी चाहिए। दोस्तों, जो छोटी छोटी बातें थी या उनके बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। हमारी जो ऑफलाइन की क्लासेस होने वाली हैं दोस्तों, उसमें हमारे एक दोस्त ने एडमिशन लिया है, वो है नीतीश श्रीवास्तव भोपाल से। नीतीश, आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूँ कि हमारी ये जो क्लासेज हैं ये 17 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 15 दिनों के लिए होंगी। ऑनलाइन क्लासेस में जिन 3 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है उनका मैं स्वागत करता हूं। इनके नाम है बलवंत सिंह, मयंक द्विवेदी और चंदन मंडल। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से 2 मित्रों के नाम हैं मानस झा दिल्ली से और बिन्नी कुमारी सारण बिहार से। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।